मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 6 जून 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज के मुख्य विषय में हम लोग सिविल सर्विस की जो प्रारंभिक परीक्षा 2019 में होगी उसकी तैयारी की शुरुआत के बारे में कुछ बातें करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं दो चीजों के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पहला तो न्यूज एनालिसिस हम लोग करते हैं और दूसरा है राजकिशोर जी को आप सबकी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। राजकिशोर, यह नाम मेरी समझ से आपके लिए अनजाना नाम नहीं होगा। अगर आप कुछ समय से मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे होंगे और प्रेस क्लिपिंग्स खासकर उन्हें पढ़ रहे होंगे तो राजकिशोर जी नवभारत टाइम्स में बहुत लंबे समय तक रहे, पत्रकार थे मूलतः और मेरे बड़े अच्छे परिचित थे, और परिचित ही नहीं बल्कि मैं उन्हें बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखता था दो कारणों से। पहला तो वो बहुत ही सभ्य सुसंस्कृत डिग्निफाइड और विचारशील व्यक्ति थे, बहुत ही डिग्निफाइड पर्सन। आप उनके साथ अगर 5 मिनट भी रह लेंगे तो उनके व्यक्तित्व की छाप से आप अपने आप को बचा नहीं सकते, इतने बेहतरीन व्यक्ति। और दूसरी बात यह कि वो भले ही पत्रकारिता में रहे लेकिन उनके अंदर एक विचारक बैठा हुआ था, वो चीजों को बड़े गंभीर नजरिए से देखते थे, सामान्य सी चीजों को भी वो बड़ा फिलोसॉफिकल बना देते थे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो बड़े नए तरीके से देख लेते थे जिसके बारे में हम लोग सोच नहीं पाते हैं। उनको पढ़ने के बाद लगता था कि यार इन्होंने ऐसा सोच कैसे लिया, कहां से इनके दिमाग में ये बात आ गई। जैसे अभी अभी मैंने एक क्लिपिंग्स उनकी डाली थी राजकिशोर जी की, आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, और उसमें उन्होंने कहा था कि ठीक है अभी जो भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री जी वंशवाद की बात कर रहे हैं, वंशवाद लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन जो व्यक्तिवाद है वह भी तो कहीं ना कहीं वंशवाद ही है। और व्यक्तिवाद को उन्होंने इस तरीके से किया था कि अगर प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुन रहे हैं और केवल अपने ही निर्णय थोपे जा रहे हैं तो वो भी तो व्यक्तिवाद है, तो वो भी एक प्रकार का वंशवाद है। तो आप देखिए कि उन्होंने व्यक्तिवाद को कैसे वंशवाद से जोड़ करके एक नए तरीके से उसे डिफाइन कर दिया। ये राजकिशोर जी की विशेषता थी। तो मित्रों, आप सब भी उन्हें पढ़ते रहे हैं और यदि उनके पढ़े हुए की छाप आपके मन मस्तिष्क पर होगी तो डेफिनेटली उनका नाम आप जान रहे होंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसे विचारशील व्यक्ति का चला जाना एक तरह से कहीं ना कहीं सामाजिक और राष्ट्रीय क्षति होती है। तो मित्रों, मैं अपने उन परिचित संवेदनशील पत्रकार के प्रति आप सब अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। फ्रेंड्स, आइए अब हम न्यूज एनालिसिस की पर आते हैं। और न्यूज एनालिसिस में देखिए आज एक ही मुद्दा है जिस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर सकते हैं और वह है कार्बन उत्सर्जन को लेकर। इनफैक्ट कार्बन उत्सर्जन की बात मैं कर रहा हूं लेकिन है ये पर्यावरण को ही लेकर के। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जिस पर आपको अपनी निगाह रखनी चाहिए और वो ये है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस की जो 45वां विश्व पर्यावरण दिवस की जो मेजबानी होगी वो इस बार भारत कर रहा है, भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। तो भारत का मेजबानी किया जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होगी। तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से देखिए मैं जो बात करता हूं वो ज्यादा सिविल सर्विस को ही ध्यान में रख करके करता हूं ना, आपके प्रिपरेशन को लेकर के। ये भी आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार पर्यावरण के बारे में बात हो रही है और उसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है वो प्लास्टिक प्रदूषण पर दिया जा रहा है। इस बार की थीम है वो प्लास्टिक प्रदूषण। अगर आप डीडी न्यूज देख रहे होंगे तो बकायदे प्लास्टिक प्रदूषण पर डिस्कशंस आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, इसकी साइंटिफिक अप्रोच आ रही है कि कैसे इसे रोका जाए। देखिए रोके जाने के बिल्कुल दो तरीके हैं। एक तो यह है कि हम इसका प्रयोग कम से कम कर दें, तो ये एक सामान्य नीति है, सामान्य उपाय है जिसे हम सब जानते हैं। आप से अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि कैसे रोका जा सकता है तो आप उन्हें लिख लेंगे, तो हर कोई लिख लेगा। आप नया क्या कर रहे हैं, दूसरों से अलग क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस में खासकर ये बहुत मायने रखता है। तो दूसरा क्या होगा, वो होगा इसका वैज्ञानिक पक्ष कि कैसे इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, कैसे इसको और रूप में बदला जा सकता है, जमीन में जो गड़े हुए हैं उनका क्या निस्तारण हो सकता है, समुद्र जो प्लास्टिक से भरा हुआ है उनको कैसे खत्म किया जा सकता है, क्या साधन हो सकते हैं, वो उसका एक वैज्ञानिक आधार होगा। तो जब आप उन्हें जोड़ देते हैं तो बट नेचुरल है कि फिर आपका प्रश्न थोड़ा सा विशेष, उत्तर आपका विशेष बन जाता है। इसी तरह से कुछ अच्छे बेहतरीन एक दो आप आंकड़े उसमें ऐड कर दीजिए। तो यही होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, अखबारों में, न्यूज में सुन रहे होते हैं, तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बस आप उन्हें नोट कर लीजिए। आप मान करके चलिए कि आपके नोट्स बन रहे हैं, पॉइंट्स को नोट करते जाना ही नोट्स बनाने की एक सिविल सर्विस की दृष्टि से प्रक्रिया होती है। मित्रों, कार्बन उत्सर्जन की बात पर प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहा कि जो हमारे न्यूज में भी ये बात थी कि 2030 तक हम अपने सकल घरेलू उत्पाद में 30-35% कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे। आपको मालूम है कि जो पेरिस सम्मेलन हुआ था 2 साल पहले, उसमें भारत ने अपने कुछ वायदे किए हैं, अब उससे अमेरिका ने अपने को विड्रा कर लिया है। तो 2030 तक 30-35% कार्बन उत्सर्जन को कम करने का जो डेटा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आपको नोट कर लेना चाहिए। ये इस तरह का डेटा जो लंबे समय तक आपकी मदद करता रहेगा, भले इस बार क्वेश्चन न पूछा जाए, लेकिन ये नॉलेज कभी पुराना नहीं होगा। और उसी में ही प्रधानमंत्री जी ने एक बात और भी कही है, और वो है कि 2022 तक हम 175 गीगावाट ग्रीन एनर्जी जनरेट करेंगे। ग्रीन एनर्जी का मतलब है वही ऊर्जा जिस जो एक तरह से रिन्यूएबल है, कह लीजिए, जो जैसे कि आपके वायु किससे कर रहे हैं आप और दूसरे सौर ऊर्जा से कर रहे हैं, ये सब के सब ग्रीन एनर्जी के तहत आते हैं। तो ये आंकड़े आपके जेहन में बिल्कुल रच बस जाने चाहिए और इसके बारे में कोई कंफ्यूजन शेष रहना नहीं चाहिए। मित्रों, अगर आपने कल रेडियो न्यूज सुनी होगी तो उसमें एक विज्ञापन आता है, और विज्ञापन प्लास्टिक प्रदूषण को ही लेकर के है, और वो कहते हैं कि आप अपना डोनेशन दीजिए। अगर आपने सुना हो ये, तो उस डोनेशन में एक शब्द आया है ग्रीन गुड डीड। ग्रीन गुड डीड यानी कि गुड का मतलब तो अच्छा, डीड का मतलब होता है काम, कार्य, कर्म, और ग्रीन मतलब हरा, मतलब हरा अच्छा कार्य। आप इसका सिंपल अनुवाद करें तो हरा अच्छा कार्य मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं वो एक अच्छा कार्य है, और किस मायने में अच्छा है कि वो हरा है, हरे रंग का है, मतलब ये पर्यावरण से मित्रता की बात है। मतलब आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पर्यावरण का विकास होगा, विनाश नहीं होगा और विकास होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बाजार जाता हूं और थैला लेके जाता हूं, कपड़े का थैला लेके चला गया और सामान खरीद करके ले आता हूं, तो अब जो सामान मैं 5-6 प्लास्टिक में लेकर के आता, उसे मैंने अपने एक थैले में लेकर के आया। देखिए, घर में आने के बाद तो हम अपना सामान वहीं रखते हैं, चाहे हम अलमारी में रख दें, चाहे फ्रिज में रख दें, रखते यही है, लेकिन लेकर के प्लास्टिक में आते, फिर उस प्लास्टिक को फेंक देते हैं। तो मैं प्लास्टिक लेकर के नहीं आया, इसका मतलब है कि मैंने विनाश से प्रकृति को बचाया। और गुड डीड इस मायने में भी है कि मैं अपनी तरफ से कोई पौधा लगा दूं, कोई पेड़ लगा दूं, तो उससे उसका विकास होगा। तो विनाश से रक्षा और विकास का काम, ये ग्रीन गुड डीड है। तो अच्छी शब्दावली है ये शब्दावली भी आपको नोट कर लेनी चाहिए ताकि इसका उपयोग आप कर सकें। ये भी सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में बहुत मायने रखती है। ये सारी छोटी छोटी चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये छोटी चीजें ही नहीं है, यही तो प्रूफ करेंगे कि नहीं, आप दूसरों से थोड़ा भिन्न हैं। आप अपने समय को जानते हैं, अपने समय की भाषा को जान रहे हैं, और आप सतर्क हैं, और सतर्क होकर के आप उनका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। केवल सतर्क होने से बात नहीं बनती है। तो मित्रों, यह न्यूज एनालिसिस पर आधारित कुछ बातें थी। अब मैं आता हूं सिविल सर्विस परीक्षा 2019 की तैयारी के बारे में। मित्रों, इसकी हम लोग थोड़ी सी सीरीज चलाएंगे। 2018 की जो परीक्षा है वो अभी प्री की हुई है, इसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस थे, क्या थे, लेकिन मैं हड़बड़ी में नहीं करना चाह रहा हूं, इस पर हम लोग बातें करेंगे। और फिर आगे आप कैसे तैयारी करेंगे उसके ऊपर भी मैं बीच बीच में आपको कुछ गाइडलाइंस देता रहूंगा। और खासकर मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले 2 सप्ताह के दौरान मैंने जो इंटरनेशनल रिलेशन पर तैयारी करने के बारे में जो लगातार लेक्चर दिए, उसकी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आप लोगों से मिली हैं। सच पूछे तो मुझे इस बात की उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी सारी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में लिखा है। जब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट लिखते हैं तो यह समझ में आता है कि नहीं, ज्यादा लोगों को अच्छा लगा है। होता क्या है, खासकर हिंदी क्षेत्र में होता यह है कि 5, 2, 4, 5 लिख देते हैं और बाकी सोचते रहते हैं यार उसने लिख दिया होगा, उसने तो बता ही दिया होगा, तो फिर हमारा भी काम चल जाएगा। वो गलत अप्रोच है, उससे काम नहीं चलता है। आप अपने दायित्व को निभाइए, आप अपना काम तो कीजिए। हम अपना काम नहीं करते और सामने वाले से उम्मीद करते रहते हैं हमेशा कि वो अपना काम करता रहे। तो बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। तो उसी प्रतिक्रिया का ये परिणाम है कि मैं आपसे ये बात कह पा रहा हूं कि नहीं, जो सिविल सर्विस परीक्षा 2019 की तैयारी जो आप कर रहे होंगे उसके बारे में मैं लगातार सीरियल में, लेकिन कंटिन्यूएशन में नहीं, बीच बीच में बातें करूंगा। तो मित्रों, आज मैं खासकर आपसे जो बात करने जा रहा हूं वो ये कि एग्जामिनेशन को हुए 3 दिन हो गए, आप या तो परीक्षा में बैठने वाले थे नहीं बैठे, या आप बैठने वाले ही नहीं थे तो नहीं बैठे, कोई बात नहीं, अब आप आगे बैठेंगे। जो परीक्षा में बैठने वाले थे और नहीं बैठे उन्हें अपना रिव्यू करना चाहिए, क्यों नहीं बैठे, वो कौन सी ताकत थी जिसने आपको बैठने से रोका, आपको करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं मानसिक मजबूती की, मेंटल स्ट्रेंथ की। याद रखिए कि अगर आप में ये मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो सिविल सर्विस परीक्षा को क्वालिफाई करना मुश्किल होगा। और यहां मैं ये भी बता दूं कि अगर मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि अब आप सिविल सर्वेंट बनने के लायक है ही नहीं। स्ट्रेंथ कोई पैदाइशी नहीं होती है, स्ट्रेंथ नो डाउट कि हमारी परवरिश से उसका निर्माण होता है, लेकिन उसे कभी भी हासिल किया जा सकता है। ये मेंटल स्ट्रेंथ है, इसके लिए कोई विटामिन प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, केवल विचारों की जरूरत होती है और आप हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आप रिव्यू कीजिए कि आप एग्जामिनेशन में बैठने वाले थे, आपने सोच समझ करके फॉर्म भरा था, आप तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन एन परीक्षा के कुछ समय पहले आप फैसला करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं बैठना है। क्यों नहीं बैठना है, आपने ये फैसला क्यों किया, किन परिस्थितियों ने आपको यह फैसला लेने के लिए मजबूर किया, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप तैयारी नहीं कर पाए, और तैयारी नहीं कर पाए तो फिर क्यों तैयारी नहीं कर पाए और इसलिए परीक्षा में नहीं बैठ रहे हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आप में से सभी के निष्कर्ष यही होंगे कि भाई हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई। मैं जानता हूं किसी किसी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, वो बात अलग है, हेल्थ इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अगर तैयारी नहीं हो पाई, यह आपका उत्तर है, तो ये बात खत्म नहीं हो गई, रिव्यू नहीं हो गया है। रिव्यू के लिए आपको एक कदम और आगे जाना होगा कि भाई तैयारी क्यों नहीं हो पाई, क्या आपके बिहाफ पर किसी दूसरे को तैयारी करनी थी कि उसने तैयारी नहीं की। जैसे मान लीजिए आपने किसी को अपना मकान बनाने का काम सौंप दिया है, लेकिन वो समय से आपको मकान बना करके नहीं दे पाया, तो अब आप क्या करेंगे, क्या ऐसा है, करने वाले आप थे, तैयारी करने वाले आप थे। तैयारी करने के बाद जो सफलता मिलती वो आपको मिलती, और उस सफलता के बाद जो आप उसका उपभोग करते, उसे एंजॉय करते, वो आप करते, मतलब सारी चीजें आपके अपनी कमांड में है। याद रखिए, ये इसमें कोई दूसरा व्यक्ति तीसरा व्यक्ति नहीं है, करने वाले आप हैं, परीक्षा देने वाले आप हैं, उस परीक्षा के परिणामों का भोग करने वाले आप हैं, सब कुछ आप हैं, जहां सारी चीजों पर आपका इतना जबरदस्त कंट्रोल है, जो चीज 100% आपके अपने हाथ में है। आप ये मत कहिएगा कि मैं नौकरी कर रहा था तो मुझे समय नहीं मिला तो मेरे हाथ में क्यों नहीं है, मेरे हाथ में कैसे है, आप बिल्कुल मत कहिएगा, बिल्कुल मत सोचिएगा। अभी जब आप लॉजिकल सोचेंगे तो आपको इन सब के भी उत्तर मिलेंगे, सब कुछ आपके हाथ में था, और इसके बावजूद अगर आपने परीक्षा में नहीं बैठने का निर्णय लिया तो आप दूसरी स्थिति के बारे में सोचिए कि जब आपके सामने एक ऐसा वक्त आएगा कि जब उसकी कुछ चीजें दूसरों के हाथ में होंगी और कुछ चीजें आपके हाथ में होंगी, तब आप क्या करेंगे, फिर तो आप सरेंडर ही कर देंगे, क्योंकि दूसरे के हाथ में भी है, दूसरे के साथ तालमेल नहीं बन रहा है, दूसरा आपका विरोधी ही है। मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है और वहां के एसपी से आपका नहीं बन रहा है, आपकी नहीं बन रही है, और अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो एसपी का सहयोग जरूरी है, तो क्या आप छोड़ देंगे जिले को उन्हीं के भरोसे कि भैया लो चलो अब ये तो एसपी जाने, हमारा काम तो हो गया। मानसिकता को मित्रों समझिए, जब तक आप इस मानसिकता को नहीं समझेंगे, इस मनोविज्ञान को नहीं समझेंगे, आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को नहीं समझ सकेंगे, केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी। मैं इस पर आगे भी फ्रेंड्स बात करता रहूंगा, चूंकि अब वक्त हो चला है, इसीलिए अब इस मुख्य विषय को यहीं समाप्त करता हूं। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आज मैं आपको ढेर सारी प्रोवाइड कर रहा हूं, इस बीच में मैंने बहुत कम क्लिपिंग्स दी हैं, तो आप यूं कह लीजिए कि मैं आप लोगों की वो क्षति की पूर्ति कर रहा हूं या बदला ले रहा हूं, आप जो भी कहना चाहें तो आप अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं ईमेल पर। मुझे एक मेल मिला है श्रुति अग्रवाल का, जो बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं, और बहुत अच्छा बड़ा प्यारा सा मेल लिखा है। हालांकि श्रुति केवल 12वीं कक्षा की स्टूडेंट हैं, लेकिन भाषा उनकी बड़ी प्यारी है, मुझे भाषा अच्छी लगी। श्रुति, आपने दो सवाल पूछे हैं। पहला तो यह है कि आप आईएएस बनना चाहती हैं, तो 12th के बाद आप क्या ग्रेजुएशन प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में करें? ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये मेरी सलाह है। देखिए, आदेश मत मानिएगा प्लीज, है ना। आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, आप अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन कीजिए। लेकिन मैं एक बात आपको कह सकता हूं कि आईएएस बनने के लिए अभी से उतनी गंभीर तैयारी करने की जरूरत नहीं है कि आप ग्रेजुएशन भी प्राइवेट से स्टूडेंट के रूप में करें, ताकि आप अपना पूरा समय आईएएस की तैयारी के लिए दे सके। देखिए, हर तैयारी का एक वक्त होता है, हमारी मेंटल मैच्योरिटी उतनी होनी चाहिए ना। अभी आप सिविल सर्विस की तैयारी की मेंटल मैच्योरिटी की स्थिति में नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद आप सही मायने में उस स्थिति में आएंगे, लेकिन भूमिका बनानी शुरू कर देनी चाहिए, वो मैं आपकी बात मान सकता हूं। और उसके लिए प्राइवेट करके और पूरा समय वहां लगाना जरूरी नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर स्टूडेंट के रूप में जा सकें, कॉलेज जा सकें। क्योंकि जब आप कॉलेज जाएंगी, वहां स्टूडेंट मिलते हैं, क्लास में एक्सप्लेनेशंस होते हैं, बहस होती है, उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यदि आपके लिए संभव हो तो आप रेगुलर स्टूडेंट हो। दूसरी बात, आपने एकेडमी में दाखिले के रजिस्ट्रेशन के लिए बात की, तो मैं बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से दूसरे भी स्टूडेंट्स को कि 12th ऑनवर्ड्स कोई भी स्टूडेंट एकेडमी में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इनफैक्ट आपके लिए ज्यादा फायदेमंद इस मायने में होगा, क्योंकि यहां बताया ही ये जाता है कि आप पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ेंगे कैसे जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको तो फर्स्ट ईयर प्रीवियस उसमें भी आपके काम आएगा, सिविल सर्विस में तो काम आएगा ही, तो शुरुआत में ही अगर आप जान जाएं कि पढ़ेंगे कैसे, तब तो सोना में सुहागा है। इसीलिए हमने 12th ऑनवर्ड्स स्टूडेंट्स को एक तरीके से दाखिला देना स्वीकार कर लिया है। तो मित्रों, सभी ईमेल लिखने वाले और दोस्तों के प्रति धन आभार व्यक्त करता हूं, और उन्हीं में से कुछ और मित्रों के नाम हैं। रेखा द्रविड़, विकास मिश्रा अमेठी उत्तर प्रदेश से, एकनाथ तुरकर, के बी मीना, ईसु शर्मा, निशा यादव, गिन्नी सिंह, सुनीता स्वराज, सतीश कुमार भारती महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, सत्येंद्र पटेल और भारती साहू बालोद छत्तीसगढ़ से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।